ओम नमो भगवते वासुदेवाया। श्रद्धास्तु वेतन्मतं मायाम् जुष्टं यद्ब्रह्मवादभिः येन माम् अभयं याया मृत्युं रक्षन्ति अतद्विधा। अनुवाद कृपया सुनिए। हे माता, पहले सुनिए। हे माता, जो लोग वास्तव में अध्यात्मवादी हैं वे निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप आश्वस्त रहें। यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलेंगी तो आप समस्त भयावह भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अंत में मेरे पास पहुंचेगी। हे माता, जो लोग भक्ति की इस विधि से अवगत नहीं हैं, वे जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। तो कृपया दोहराइए अब। हे माता, जो लोग वास्तव में अध्यात्मवादी हैं वे निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप आश्वस्त रहें। यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलेंगी तो आप समस्त भयावह भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अंत में मेरे पास पहुंचेंगी। हे माता, जो लोग भक्ति की इस विधि से अवगत नहीं हैं, वे जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। तात्पर्य, यह संसार चिंताओं से पूर्ण है, अतः भयावह है। जो इस संसार से छूट जाता है वह स्वतः सभी चिंताओं तथा भय से मुक्त हो जाता है। जो भगवान कपिल द्वारा प्रतिपादित भक्ति पथ का अनुसरण करते हैं वे आसानी से मुक्त हो जाते हैं। तो माता देहूति ने भी पिछले श्लोकों में भगवान कपिल देव का गुणगान किया या उनके बारे में हमें बताया, हम जैसे जीवों के। तो भगवान उनकी प्रार्थनाओं से या उनके गुणगान से प्रसन्न होकर अब उन्होंने कुछ शब्द कहे या बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, ये समझाने के लिए कि जो भी उन्होंने शिक्षाएं दी है, हे माता, अगर जीव इसको पालन करेगा श्रद्धा और विश्वास से तो वह निश्चित ही मेरे पास आएगा। भगवद गीता में भगवान कई बार ये बात बोलते हैं, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान ये बात बार बार क्यों बोलते हैं और इस श्लोक में फिर भगवान बताते हैं, जिसे प्रभुपाद जी ने 3-4 लाइनों में समझाने का हमें प्रयास करा कि भगवान इस बात की बार बार विश्वास दिलाते हैं जीव को कि घबराइए मत, आप मेरे पास आएंगे। जब आप ये भक्ति पथ जो मैंने शिक्षाएं दी हैं उसका पालन करेंगे तो आप निश्चित रूप से मेरे पास आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी इसमें समझा रहे हैं कि अपने तात्पर्य का शुरुआत ही उन्होंने उससे करी है, जो भगवान कपिल देव जी या अनुवाद में जो बात बीच में आया कि आप समस्त भयावह भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अंत में मेरे पास पहुंचेंगे। भगवान कपिल देव समझाना चाहते हैं कि संसार पूरा समस्त भौतिक संसार, केवल पृथ्वी ही नहीं, जितना भी भौतिक संसार में जितने भी लोग हैं, सब जगह कलमश हैं, परेशानियां हैं। तो इससे ये जीव को इस बात का साक्षात्कार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी एक बार तमाल कृष्ण महाराज से बात कर रहे थे, ये उनके आई थिंक डायरी में है या मैंने सुना। प्रभुपाद जी बोलते, मुझे बड़ा दुख होता है कई बार मैं जब देखता हूं कि मेरे शिष्य भगवान की भौतिक शक्ति या माया शक्ति से डरते नहीं है। दे आर नॉट एनफ अफ्रेड ऑफ मेटीरियल एनर्जी। यही बात भगवान कपिल देव जी माता देहूतु के को लक्ष्य या उनके द्वारा हम जैसे जीवों को समझाना चाहते हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये बिल्कुल भौतिक कलमश है, इसमें भयावह स्थिति है। जब तक जीव इस स्थिति को ठीक से समझेगा नहीं, तब तक उसके लिए ठीक से साधना कर पाना या ठीक से भजन कर पाना मुश्किल होता है, या वो कभी कभी साधना में ढीला हो जाएगा या उसे पूर्णतः मतलब उत्साह नहीं मिलेगा। इसीलिए सब जो हमारी सबसे पहली प्रार्थना होती है जब हम आते हैं मंदिर में, तो सबसे पहली प्रार्थना का सबसे पहला शब्द होता है संसार दावा नलनी ढिलोका नाया कारुण्य घना घनात्मा। ये संसार दावानल है। दावानल ऐसा दावानल मतलब जैसे कि बताया गया है जैसे जंगल में आग लगती है, ये साधारण सा दावानल नहीं है कि किसी ने कभी कभी उत्सव में हम देखते हैं या उत्तर भारत में या पंजाब जैसे स्थिति में बनाते हैं, वो लोहड़ी बनाते हैं तो थोड़ी सी आग लगा के उसके आसपास खड़े हो जाते हैं, वो वैसी आग नहीं है, दावा नल है। ये अग्नि का पूरा कुंड है। तो सबसे पहली प्रार्थना प्रभुपाद जी ने मतलब ये रखी। और मंदिरों में तो डीटीज के सामने भी ये प्रार्थना गाई जाती है, जो अर्चय विग्रह उसके सामने भी यही प्रार्थना गाई जाती है, संसार दावा नलनी ढलो का प्राणा या कारुण्य घना घनात्म। तो जो संसार है ये दावा नल के समान है। ये भगवान ने या कृष्ण ने इसकी व्यवस्था ऐसे करी है कि जीव ये समझ सके कि ये स्थान जो है पूरा भौतिक संसार उसके रहने के लिए नहीं है, उसको मेरे पास क्योंकि भगवान की कृपा है, करुणा है, इसीलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी कि जीव समझ सके इस बात को कि ये संसार उसके लिए नहीं है। क्योंकि जीव की जो प्राकृतिक स्थिति या नेचुरल जिसे कहते हैं स्थिति ये है कि वो हमेशा सच्चित आनंद, हमेशा आनंद में रहता है, पूरा ज्ञानमय रहता है, हमेशा से है, ये उसकी नेचुरल मतलब स्थिति है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि वो आनंद में रहता है, कृष्ण के सानिध्य में जब रहते हैं, भगवान के सानिध्य में जब जीव रहता है तो उसे पूर्ण आनंद मिलता है। उसी आनंद की खोज में अब जीव जो किसी कारणवश इस भौतिक संसार में है प्रयास कर रहा है, और वो कोशिश करता है इधर उधर, बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी गुरुजन आए हैं या आचार्य गण आते हैं, वो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये स्थिति, ये जगह हमारे लिए नहीं है। अगर हम ध्यान समझे तो जीव को शास्त्रों के अनुसार तीन तरह के दुख दिए जाते हैं, आप सबको पता होगा, भक्त लोग हैं, इस दुख के कारण उसे भय रहता है। अगर हम साधारण भाषा में भी समझने का प्रयास करें, देखिए अगर हम भय को समझने का प्रयास करें, देखिए पूरे विश्व में व्यक्ति इस भय से बचने के लिए अपने आप को मतलब अपना प्रयास कर रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति जो घर पर है वो भय भय से बचने के लिए अपने परिवार को इस सर्दी गर्मी बरसात इन सब दुखों से बचाने के लिए कि उन मेरे परिवार वालों को और मुझको इससे परेशानी ना हो वो घर का निर्माण करवाता है। और एक घर का निर्माण कराने में कितनी शक्ति लगती है ये आप सबको पता होगा अच्छे से, मेरे से ज्यादा आप अनुभवी होंगे इसमें। फिर जब घर तैयार कर लेता है उसको चलाने के लिए उसे कितना प्रयास करना पड़ता है। ये तो छोटी छोटी चीजें, अभी आध्यात्मिक स्तर पर तो आई नहीं है व्यक्ति जीव, ये मैं भौतिक लोगों की बातें कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं सारे कार्य? क्योंकि ये जो भय और ये दुख हमें दिखते हैं, हमें सामने दिख रहा है कि गर्मी हो रही है सर्दी हो रही है, ये दुख तो हमें दिख रहे हैं। फिर अगर परिवार में है तो परिवार को ठीक से उनके प्रसाद मिल जाए या भोजन मिल जाए, ठीक से उन्हें कपड़ा मिल जाए, ठीक से बच्चे पल बढ़ जाए। अगर पुत्र है तो ठीक से वो बेचारा ठीक से शिक्षा ग्रहण कर ले, शिक्षा ग्रहण करने के बाद ठीक से उसके पास कुछ नौकरी आ जाए जिससे वो अपने परिवार को या अपनी सुरक्षा कर सके, अपने उस भय से बच सके। अगर पुत्री है तो पहले उसके लिए पति अच्छा, माता पिता की सबसे बड़ी चिंता यही होती है, चाहे वो अमीर घर का है चाहे वो गरीब घर का है, कि मेरी पुत्री के लिए योग्य वर कैसे मिल जाए। इस तरह के जो हम कह सकते हैं इन्हें भौतिक स्तर पर भय हैं जिससे व्यक्ति कितना प्रयास करता है। अगर शास्त्रीय भाषा में समझा जाए तो आधि दैविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक। ये आधि भौतिक जो हमें दिखते हैं, आधि दैविक ये भी दिखते हैं, आध्यात्मिक तो कई बार दिखते भी नहीं है, जो हमारे मन से जो हमारी चेतना से कई बार जो आते हैं। अभी कल एक प्रभु जी अमेरिका से, वो इंग्लिश में क्लास दे रहे थे, वो बता रहे थे अमेरिका में एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 3 लाख या इतने लोग अभी वहां की सरकार की चिंता है कि वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं कि उसमें व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूं, वो बस ऐसे घूमता रहता है। उसका नाम भी बता रहता है, अजीब सी बीमारी होती है, डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आता क्या करें। वो अपना नाम भूल जाता है, अपने घर सबको भूल जाता है और घूमता रहता है ऐसे बस, क्योंकि इतनी ज्यादा इतने ज्यादा टेंशन है। हम जानते हैं कि अभी अमेरिका में अभी जब पिछले कुछ सालों पहले वो क्या कहते हैं इकोनॉमिक या उनका वो जो परेशानी हुई थी तो कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो ये सारे दुख हैं सारे, लेकिन जीव अज्ञानवश जब तक उसे कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं होता, भगवान के बारे में पता नहीं चलता, तब तक वो इन्हीं से जूझता रहता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य इस पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि वो करुणावश वो प्रचार करते हैं। कई बार हम ये कथा भी सुनते हैं कि अगर एक मेले में जैसे कोई किसी अमीर बच्चे किसी अमीर पुत्र मतलब व्यक्ति का संतान खो गई है, पुत्र या पुत्री खो गई है और खूब रो रही है, तो कोई व्यक्ति आके उसको, मान लीजिए छोटा बच्चा तो ठीक है, थोड़ा सा कुछ आइसक्रीम दे दिया तो वो थोड़ी देर के लिए खुश, लेकिन आइसक्रीम खत्म होते फिर रोना शुरू, फिर किसी ने आके कुछ और दे दिया। तो इसी तरह से बाकी संसार के सारे कार्य हैं, अगर वो कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ भी कार्य कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि हाँ बड़ा आनंद मिल गया हमें या खुश हो गए वो, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर वही दुख। सबसे बड़ा दुख जो है, प्रभुपाद जी कहते थे कि दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट इसको खत्म नहीं कर सकता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। शास्त्र बड़े चुने हुए शब्दों को इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को या किसी जीव को जो भगवान से अलग रहना चाहता है उसको कोई मौका ना मिले। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्या क्या कोई भी व्यक्ति इस संसार में जिसने जन्म लिया है, क्या वो मान लीजिए जन्म के दुख को भूल गया, लेकिन माता को तो याद रहता है ना कि कितनी मुश्किल से एक पुत्र का या एक पुत्री का संतान का जन्म होता है, उसके बाद मृत्यु। हर एक व्यक्ति को पता है कि एक दिन हमारी भी मृत्यु हो गई, लेकिन माया की शक्ति इतनी शक्तिशाली है, माया का प्रभाव इतना शक्तिशाली है, उस पर वो कार्य नहीं करता। जो भक्तगण, जो सौभाग्यशाली जीव कृष्ण भावना मृत संघ से या भक्तों के संघ में आते हैं, तब उन्हें रियलाइजेशन या अनुभव होता है थोड़ा। युधिष्ठिर महाराज जी का यही, जो यक्ष का जो प्रश्न था युधिष्ठिर महाराज से, यही था ना कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, किम आश्चर्य, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा यह आश्चर्य है सबसे बड़ा, कि हमें पता है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने शरीर छोड़ा, हमारे सामने छोड़ा, और उसके बाद जो व्यक्ति है वो इस बात को समझता नहीं है, अनुभव नहीं करता कि क्या करूं, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, ये क्यों होगा उनके साथ, क्यों मर गए वो, ऐसा मेरे साथ भी होगा एक दिन। और उस वक्त तो जानता भी है, जब शमशान घाट में होता तो व्यक्ति रोता भी है, सोच कई बातें, आध्यात्मिक बातें भी शुरू हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही शमशान घाट के बाहर से बाहर आते हैं सब व्यक्ति भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो संग है, जो श्रवण कीर्तन है, वो ठीक से नहीं हो रहा। और हम भक्तों को तो बहुत अच्छे से इस बात को समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा अनुवाद इस पे लिखा है, संसार चिंताओं से पूर्ण है अतः भयावह है। ये तो मैंने मोटी मोटी, मतलब जो मुख्य मुख्य चिंताएं गिनाई हैं, और कितनी चिंताएं होती हैं हम रोज के जीवन में देखते हैं। अगर हम शरीर को ठीक से देखें तो ये पूरा शरीर दुख देने के लिए बना है, सुख तो हमें थोड़ी देर के लिए मिलता है, क्षण मात्र। अगर हम ये आंख देख ले, थोड़ा सा ठीक है दिख रहा है, लेकिन इसमें जरा सा भी कुछ गिर गया तो परेशानी हो जाती है। हम दांत हैं, हमें चबाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दांत में थोड़ी सी परेशानी हो जाए तो डॉक्टर साहब को पता है कितना परेशानी हो जाती है, कैसे आते हैं आदमी, मतलब कुछ कर नहीं पाता, बस ऐसे बैठा रहता है बेचारा, क्योंकि इस बात का उसको भक्त संग नहीं मिल रहा, कोई बता नहीं रहा, तो वो ऐसे जीवन भी तो वो समझता ये है, ऐसे ही है जीवन, नहीं ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान कपिल देव कह रहे हैं, ये भगवान कहते हैं कि आप मेरे पास आएंगी, पक्का आएंगी, कैसे, जब इन भक्ति का जो कार्य है उसको हम ठीक ठीक से करेंगे, सम्यक रीति से, मतलब बड़े ध्यान पूर्वक। जब हम संसार दावानल गाते हैं तो बड़े सोचने चाहिए कि मैं क्या गा रहा हूं। अक्सर हम गुरुकुल में बच्चों को जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं बेटा उसके मतलब को समझो, तोते की तरह मत, कम से कम बड़े बच्चों को हम बोलते हैं कि तोते की तरह मत उसको बोलिए, उससे लाभ तो होगा, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, आप समझिए उसका शब्दों का अर्थ समझिए। इसलिए भगवान कपिल देव समझा रहे हैं कि आप समस्त भयावह भौतिक कलमश से मुक्त होकर अंत में मेरे पास पहुंचेंगी। इससे पिछले वाले श्लोक में प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, वो कहते हैं कि मुक्त जो जीव होता है उसको, मतलब उसकी, अगर वो सम्यक रीति से भक्ति का पालन कर रहा है, गुरु के आदेशों का पालन करते हुए, गुरु के निर्देशन में, तो वो इसी जीवन में वो मुक्त हो जाता है। इसी जीवन में हम देखते हैं कि उसको ये भौतिक कलमश उसे सताते नहीं है। अगर कोई उसका अपमान कर रहा है तो उसे दुख नहीं होता, वो भगवान की कृपा समझता है उसको, हर एक जगह वो भगवान की कृपा समझता है। इसमें लिखा देखिए, चाहे वह जहां भी स्थित हो, पिछले वाले श्लोक के अनुवाद में, यदि उसका लक्ष्य गुरु के निर्देशानुसार परमेश्वर की सेवा करना हो तो वह जीवन मुक्त अर्थात अपने भौतिक शरीर में भी मुक्त कहलाता है। कभी कभी नव दीक्षितों के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि उनका गुरु मुक्त है या नहीं, और कभी कभी वे उसके शारीरिक मामलों के प्रति भी शंकालु रहते हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में जीते जाते उदाहरण है ऐसे, हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज, क्या उन्होंने प्रचार करना बंद कर दिया? आम व्यक्ति होता तो वो उठता ही नहीं, लेकिन वो करुणावश, उन्हें पता है ये तो स्थिति है, शरीर रहेगा ऐसे, लेकिन फिर भी प्रचार, उनका प्रचार करुणावश, हम जैसे भक्तों का प्रचार अपनी पवित्रता के लिए। हिज होलीनेस जय पताका महाराज, इतना भारी शरीर है उनका देखिए, फिर भी मेरे जैसे भक्त को तो अगर थोड़ी सी भी परेशानी हो जाए तो आज हम बस हो गया, हरि बोल। तो ये जब तक हम इस जो स्थिति है हमारी, इसको अच्छे से रोज हर प्रतिदिन समझेंगे नहीं, तब तक भजन जो होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवान कपिल देव जी समझा रहे हैं माता देवती को लक्ष्य करके, प्रभुपाद जी ने हमें पहली प्रार्थना ही यही दी है, संसार दावा नल नल नील लोगों का। तो इसका जब हम भक्तों के संग में रहकर इन श्रवण और कीर्तन अच्छे से करते हैं और समझते हैं इन बातों को, तब ये बार बार सुनने को मिलता है हमें। तो भक्त की ये स्थिति होती है कि वो समझता है इस बातों को, और भगवान कपिल देव और श्रील प्रभुपाद ऐसे आचार्यगण आके हमें बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, और कृष्ण ने तो कृपावश हमें ऐसा शरीर दिया है जो हम देख सकते हैं। तो हमें इस बात को अच्छे से समझते हुए, शास्त्रों का ठीक से श्रवण करते हुए, पढ़ते हुए, फिर अपनी साधना में लगना चाहिए। और जब व्यक्ति इनको समझते और समझते हुए, अनुभव करते हुए, यानी आध्यात्मिक अनुभव करते हुए जब वो प्रचार में लगता है, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते थे कि प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज द एसेंस, एसेंस है हमारी भक्ति का। तो जब हम प्रचार करते हैं, जैसे कि हमने पिछले श्लोकों में देखा था कि भगवान बहुत खुश होते जब माता देवती ने प्रश्न किया था कि उन जीवों का क्या होगा, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे कि इन जीवों का कैसे, मेरा, माता देवती ने कहा मेरा और जीवों का कैसे उद्धार होगा, आप मुझे बताइए। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे, गुणगान किया। यही भगवान का कपिलदेव अब यहां पर माता देवती को, मतलब पहले श्लोक में तो बहुत अच्छा लिखा है, एक देखिए वैष्णव आचार भी समझा रहे हैं। प्रसन्न होकर मात्र वत्सल भगवान कपिल ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया। तो ये एक वैष्णव का मतलब आचरण दिखा रहे हैं भगवान, कि जब भक्त कई बार उनको प्रशंसा मिलती है और लोगों से कई बार जब प्रचार, विशेषकर जब प्रचार में जाता है, तो उसको, उसे बड़े ध्यान पूर्वक पहले तो ग्रहण करना चाहिए और गुरु को अर्पित करना चाहिए, और उसके बदले में हमेशा प्रचार करना चाहिए। मैंने एक वैष्णव से सुना था, अगर आप किसी भक्त के घर जाते हैं, भक्त लोग बुलाते हैं वैष्णवों को, आइए आज हमारे घर में, आज ठाकुर जी का, आज हमारा, मतलब जैसे हमने ठाकुर जी की स्थापना करी थी, आज उनका एक वर्ष हो गया, आप आइए, हम उत्सव कर रहे हैं, प्रसाद लीजिए। और भक्त लोग, कोई भी भक्त, चाहे गृहस्थ है, चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे जो भी, अगर वो भक्त दूसरे भक्त के घर में जा रहा है और वहां कीर्तन नहीं कर रहा, तो उसकी जितनी भक्ति के जो शुभ कर्म है वो व्यक्ति ले जाता है। तो इसलिए जब भी कहीं पर जाते हैं तो कीर्तन करें, कृष्ण की कथाएं करना चाहिए जो व्यक्ति जा रहा है, जो आमंत्रित है। एक बहुत बड़ा बढ़िया ये मतलब वैष्णव आचार है जो भगवान कपिल यहां पर समझा रहे हैं, कि जब हम जाते हैं तो हमें बहुत अच्छे से इस तरह से कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। केवल उपदेश देना ही प्रचार करना नहीं होता, मैंने कई बार इस बात को बोला है, जब भी मुझे ये सेवा करने का मौका दिया जाता है, कृष्ण भक्ति का प्रचार मतलब कि एक दूसरे से, रूप गोस्वामी कहते हैं ना, ददाति गणाति गुह्यम आख्याति, यू शुड पूछना चाहिए एक दूसरे से, एक दूसरे को उपहार देना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए। इसी से भक्ति आपस में भक्तों का मनोबल बढ़ेगा आपस में, जब वो देखेंगे इतना प्रेम है आपस में। किसी को कीर्तन नहीं आता कम से कम प्रसाद लेके जा सकते हैं। अगर किसी घर में जा रहे तो उसके अर्च विग्रह के लिए, उसके ठाकुर जी के लिए माला ही ले जाए। भगवान कृष्ण का चित्र ले जाए। इस तरह से जब हम क्रिया करते हैं तो एक एक तो जो जीव है वो एक भक्त के संग में रहेगा बहुत अच्छे से, और जब इन साक्षात्कारों को सुनेगा तो उसके मन में और दृढ़ता आएगी, क्योंकि वो देखता है प्रत्यक्ष। जो ये जो राज विद्या है, ये जो ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष वागम है। ऐसा नहीं है कि ये करेंगे तो दिखेगा नहीं, प्रत्यक्ष वागम। भगवान कहते हैं राज विद्या राज गोह्यम पवित्रम एदम उत्तमम, प्रत्यक्ष वागम। प्रत्यक्ष मतलब देखना सामने, सुसुखम कर्तव्यम। और आनंद की बात तो यह, भक्तों को ये जो भयावह स्थिति संसार की है, ये कैसे हो जाती है भगवान बताते हैं। एक गाय के खुर के बराबर, जो संसार जो दामनल है या जो संसार का सागर है उसके बराबर हो जाता है। भक्तों को पता भी नहीं चलता कैसे जीवन बीत गया उनका। भगवान कृष्ण भक्तों को दुख देते भी हैं लेकिन साथ में उसका समाधान भी दे देते हैं। उसको ये बार बार रियलाइज करवाते हैं, उसको बार बार अनुभव कराते हैं, देखो ये दुख आया। भक्तों का अनुभव होगा ऐसा, तभी तो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, कई कई सालों तक जपते हैं। एक जीव जो भक्ति में आता है उसका उसकी भक्ति का रुकने का कारण एकमात्र कारण होता है वैष्णव अपराध। भक्तों के संग में रहने से पहले तो वैष्णव अपराध नहीं कर रहा था वो, लेकिन जैसे ही भक्तों के संग में आता है और उसने वैष्णव अपराध करा तो उसकी भक्ति रुकती है, तभी वो भक्ति छोड़ के जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, वरना नहीं जाता। लेकिन इसका भार किस पर होता है, इसकी जिम्मेवारी किस पर होगी, उसने वैष्णव अपराध करा, जो वहां के सीनियर जो और वैष्णव होते हैं वो। एक बार दिल्ली में हम गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से बात कर रहे थे, ये काफी साल पहले की बात है। कुछ भक्त लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ छोड़ के कहीं इधर उधर जा रहे थे, तो भक्त लोग कह रहे देखिए जी वो ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। भक्त के बारे में नहीं, वो और उन वैष्णवों के बारे में कह रहे थे कि वो वैष्णव ऐसे कर रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं भक्त लोग, वो वैष्णव ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए उनको, हमारे भक्तों को लेके आ रहे हैं। महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया इसका, अभी भी मुझे मतलब बार बार ये याद आता है। महाराज ने बोला कि वो वैष्णव है, वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, कमी हम में है, हम भक्तों का ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। ये होता है वैष्णव। अगर कोई वैष्णव अपराध करना तो हमें देखना चाहिए वो क्यों कर रहा है ऐसा, मेरी मैं उसको अच्छे से उसकी उसको प्रेम नहीं दे पा रहा, मैंने उसका अच्छे से ख्याल नहीं करा, तभी तो वो शायद ऐसा हो गया। तो अगर वो भक्त संग छोड़ के चला जाएगा तो उसका हाल ये होगा कि फिर वो संसार दावानल में रहते हुए भी उसको समझ नहीं पाएगा। अमेरिका जैसे देश में जहां पे भौतिक मतलब जो जरूरतें होती है या भौतिक अवस्था की पूर्ण स्थिति है, वहां पर अगर आप काम नहीं भी कर रहे तब भी सरकार आपको पैसा देती है। कई भक्त लोग तो इतने भक्त चतुर होते हैं ना, वो वहां जाके जैसे अमेरिका में जैसे लोग हैं वो वहां जाके कुछ साल रहेंगे फिर वो काम करना बंद कर देते, कहते मैं क्यों काम करूं इनके लिए, उन्हें भक्ता मिलता है फिर सरकार से, वो उसी से गुजार बाकी वो फिर वृंदावन आ जाते हैं, कुछ साल जाएंगे फिर वृंदावन भक्ति में, मतलब सब चीजों को भक्ति में इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे भौतिक स्थिति ऐसी है कि कोई व्यक्ति काम भी नहीं करता। भारत में देखिए, अगर आप देखें कैसे मतलब लोग पागल होते हैं अमेरिका या ऐसे देशों में जाने के लिए, लेकिन वहां की स्थिति बता रहे हैं वो जो अमेरिका के भक्त हैं, वो कहते हैं ऐसी बीमारी अब हो गई है। इससे पहले भक्ति भृत भागवत महाराज जो पहले यहाँ पे टेम्पल प्रेसिडेंट भी थे, वो साइकेट्रिस्ट के डॉक्टर हैं। साइकेट्रिस्ट मतलब समझते हैं जो भक्त लोगों का जो जिस व्यक्ति का दिमाग थोड़ा सा वो हो जाता है उसके डॉक्टर थे। तो कहते हैं अमेरिका में सबसे ज्यादा अगर कोई पैसा कमाता तो ऐसे डॉक्टर कमाते हैं। क्योंकि ये ज्ञान है ही नहीं। अब भारत में भी ऐसी स्थिति होती जा रही है, अब जाइए शहरों में। तो ये तो मतलब भौतिक स्थिति के बारे में, आध्यात्मिक स्थिति की तो फिर बाद में बात आती है। तो आध्यात्मिक जो दुख है कि जीव को, ये एक आध्यात्मिक भक्त को ये डर रहना चाहिए कि मैं कहीं गिर ना जाऊं अपनी भक्ति से। भौतिक दुखों का तो उसे, उससे तो ऊपर उठना ही चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपको उदाहरण भी दिया राधा गोविंद महाराज जी, जो सशक्त जो अभी हैं उदाहरण हमारे पास प्रचार कर रहे हैं, भौतिक स्थिति उनके लिए कोई ज्यादा वो नहीं है, कृष्ण ने सब दिखाया उनके द्वारा। तो ऐसी भक्त को भौतिक स्थिति से तो घबराना ही नहीं चाहिए, उसके बाद आध्यात्मिक भय कि मैं कहीं ना जाऊं, आध्यात्मिक से कहीं वैष्णव अपराध ना हो जाए। बड़े ध्यान पूर्वक, अपराध तो मुझे दूसरे वैष्णवों के साथ प्रेम के साथ संबंध बनाना चाहिए, जितनी मेरी यथाशक्ति है उनका ध्यान रखना चाहिए। वैष्णव में क्या अच्छे गुण हैं, अभी हम एक एक्सरसाइज कर रहे थे गुरुकुल में बच्चों के साथ, एक बच्चे का जन्मदिन था, तो मैंने बच्चों से बोला बेटे ये बच्चे का आज जन्मदिन है तो आप सब बताओ इसके गुण। तो बच्चों ने कहा लिखो, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, उसके कम से कम 25 गुण बच्चों ने बता दिए। बच्चे भी आश्चर्यचकित हो रहे थे, अच्छा अच्छा ऐसा हो गया। तो वैष्णव सदाचार में भक्ति बृहद भागवत महाराज ने हमें सिखाया कि हमें जिस भक्त के प्रति हमें ईर्ष्या और यह कुछ हो रहा है तो हमें लिखने चाहिए उसके अच्छे गुण। इसमें तो बहुत अच्छा गुण है, ये तो बहुत अच्छे से कीर्तन करता है, ये देखो ये तो किसकी साधना कितनी अच्छी है, तिलक कितना अच्छा लगाता है। कई बच्चों ने बोला उसके बारे में तिलक बहुत अच्छा लगाता है प्रभु जी, बताइए ये भी अच्छी बात है। तो इस तरह से पहले खुद रियलाइज मतलब अनुभव करते हुए कि ये संसार पूरी तरह से दुखाल्यम है, केवल एकमात्र यहां कृष्ण भक्ति का जो भगवान ने या चैतन्य महाप्रभु ने दयावश महावदान्य अवतार ने हमें दिया है उसी में सुख मिलेगा बस, वरना कुछ भी करते रहे दुख ही दुख है। इस बात को समझते हुए और जीवों को जो भगवान के ही अंश हैं प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। काफी कुछ बोल दिया मैंने जो मेरे शक्ति में था। किसी का कोई प्रश्न और कोई कमेंट तो आप सब कृपया करके आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी इस संसार के दावानल को समझ सकूं और प्रभुपाद की संस्था में रहते हुए कुछ सेवा कर सके। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, समस्त गौर भक्त।